महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 2। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोहे सौवसाहूणम्, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम्, महाधवलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबली भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंड अगम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार शुरू हुआ है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 6 पर हम आ गए। 6। अब यहाँ जो 24 संयोग द्वार बताए हैं, उसमें से जो 11 अनुयोग द्वार है उसकी हमने चर्चा की थी। सबसे पहले संज्ञा बात देखी थी। संज्ञा में वो घाती और अघाती ऐसी संज्ञा होती है, और उसमें चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक, एकस्थानिक जो बात है, तो हमने ये बात है कि घाती में तो चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक, एकस्थानिक बंद होते हैं, परंतु अघाती में द्विस्थानिक तक ही रुकते हैं। चतुस्थानिक या त्रिस्थानिक या द्विस्थानिक, एक स्थानिक बंद वहां नहीं होता।
अघाती
में जैसे वेदनी है तो साता वेदनी में चतु, ती और दो, चतु यानी वो ऊपर के।
पहले की पुस्तकों में ऐसा सेम देखा ना, सर्वे में
ये घाती, घाती की बात नहीं है ये, वो समुदाहार में देखा था। अभी भी लास्ट में जो हमने देखा था ना, जीव समुदाहार या प्रकृति समुदाहार में, उसमें हमने यौ मध्य बनाए थे हर एक के, साता बंधक जीव, चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक, द्विस्थानिक, असाता बंधक जीव, यानी ज्ञानावरण का जो बंध कर रहे वो कोई साता के बंधक है, कोई असाता के, उसकी बात वहाँ अभी हमने वो समुदाहार में देखी। यहाँ तो अनुभाग की अपेक्षा बात, वहाँ तो इन जनरल स्थिति बंध की अपेक्षा बात थी, यहाँ अनुभाग बंध की बात है।
त्रिस्थानिक
होते, एक स्थानिक कोई किसी का नहीं होगा, एक बात। उसके बाद हमने ये बात देखी थी कि उसके नाम भी लता, दारु, शैल, अस्थि और शैल देखे थे, और इसमें प्रशस्त अप्रशस्त में दो अलग अलग नाम है, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, और नीम, कांजीर, विष और हलाहल, ये बातें हमने कल देखी थी। फिर उसी में सर्वबंध, नौ सर्वबंध, जो पूरा ही उत्कृष्ट अनुभाग बनता है उसमें सारे ही स्पर्धक बनते हैं तो उसको सर्वबंध कहेंगे, थोड़ा कम बंधेगा तो नौ सर्व हो जाएगा, उसी को उत्कृष्ट अनुभाग बंध, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, जघन्य अनुभाग बंध, अजघन्य। अभी यहाँ हमको सोचना है कि कौन सी प्रकृति प्रशस्त है, कौन सी अप्रशस्त है। मूल प्रकृतियों में जब बात करनी है उसमें अघाती में और सोचना पड़ता है। जैसे वेदनीय में उत्कृष्ट किसका कहेंगे, साता, वो तो आप स्थिति बंध की देखें, तो अनुभाग उत्कृष्ट प्रशस्त का होगा कि प्रशस्त होगा, तो साता का जो दसवें में होगा वो, इस तरह से हमको देखना है। और जघन्य कहाँ होगा, असाता का नहीं होगा, इन बिटवीन होगा, साता का भी असाता का भी मध्यम परिणाम में होगा, जहाँ वो द्विस्थानिक होता है वहाँ पर।
अनुभाग में,
अनुभाग यानी फलदान शक्ति, उसके अविभाग प्रतिच्छेद कितने आते उदय में, उसकी बात। अभी हम यहाँ पढ़ते हैं, अपना विषय शुरू होता है स्वामित्व प्ररूपणा। आज 2 नंबर है, वो कल का आपका 2 नंबर का हुआ था ना दोपहर में, वो मुझे 2 नंबर ही से याद आ रहा था। हाँ, ये करना नियोग परिचय लेक्चर शुरू है ना संडे को, वो नंबर 2 का था। अभी स्वामित्व प्ररूपणा शुरू होती है, आगे स्वामित्व का कथन करने के लिए वहाँ ये 3 अनुयोग द्वार होते हैं, प्रत्ययानुगम, विपाक देश और प्रशस्ता प्रशस्त यानी प्रशस्त अप्रशस्त प्ररूपना प्रत्ययानुगम की अपेक्षा प्रत्यय ने उसके कारण किसके कारण अनुभाग बंध के कारण तो अनुभाग बंध के कारण कौन से हैं तो प्रत्ययानुगम की अपेक्षा छह कर्म कारण बंध का कारण हम तो कहते बंध के कारण जब बंध के कारण कहेंगे ना प्रत्यय केवल प्रत्यय कहेंगे बंध के उसमें अनुभाग शब्द नहीं डालेंगे तो बंध के प्रत्यय कौन से हैं मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय में डालेंगे तो भी कषाय और योग चार होते हैं अब यहाँ अनुभाग के कारण है तो अनुभाग में कारण क्या है
अनुभाग
जैसे मिथ्या तो अविरति प्रमाद और कषाय क्योंकि योग से तो प्रकृति प्रदेश बंद होता है तो अनुभाग में तो यहाँ क्या लिखा देखो मिथ्या तो प्रत्यय असंयम प्रत्यय यानी अविरति जो है और कषाय और प्रमाद इकट्ठा करके कहने के जैसे समय सार में भी चार ही प्रत्यय बताए कौन से चार बंद के चार प्रत्यय मिथ्यात्व अविरति कहो या असंयत कहो कषाय और योग अब इसमें से योग इसमें
नहीं लिया
क्योंकि यह अनुभाग बंद है समझ में आती है बात ये तो प्रत्यय में तीन ही प्रत्यय लिए यहाँ पर चार में से तीन लिए योग को छोड़ा प्रमाद को कषाय में गर्भित करके वो उसमें ले लेते हैं तो देखो मिथ्या तो प्रत्यय देखो प्रत्ययानुगम की अपेक्षा छह कर्म
में हाँ
आयु को भी छोड़ेंगे और
वेदनी
को छोड़ेंगे तो मिथ्या तो प्रत्यय असंयम प्रत्यय कषाय प्रत्यय होते हैं और वेदनीय कर्म मिथ्या तो प्रत्यय असंयम प्रत्यय कषाय प्रत्यय योग हाँ ऐसा भी ले लेना यहाँ तो अनुभाग की नहीं भी बात करेंगे तो भी जो अन्य छह कर्म है कहाँ तक बनते हैं ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें में अकेला सातावेदनीय है यानी वेदनीय है यहाँ मूल प्रकृति की बात चल रही है तो उसको तो योग को भी इंक्लूड करेंगे भले वहाँ अनुभाग नहीं बन रहा है पर बंद है तो यहाँ क्या कहते देखो प्रत्ययनुगम की अपेक्षा छह कर्म मिथ्यात् प्रत्यय असंयम प्रत्यय कषाय प्रत्यय होते हैं और वेदनीय कर्म मिथ्यात् प्रत्यय असंयम प्रत्यय कषाय प्रत्यय और योग प्रत्यय होता है इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए प्रत्यय का अर्थ होता है बंध का कारण विशेषार्थ सात नंबर के पृष्ठ यहाँ प्रत्यय शब्द से बंध के हेतुओं का ग्रहण किया है बंध के हेतु जैसे आठवें अधिकार में तत्वार सूत्र के आठवें अध्याय के पहला सूत्र है मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योगा इति बंध हेतवः अभी इसमें प्रमाद को हमेशा कषाय में गर्भित करके चार प्रत्यय कहने की पद्धति है तो बंध के हेतु चार है हेतु ने कारण मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग अन्यत्र प्रमाद को भी बंध का हेतु कहा है परंतु वह असंयम और कषाय की मिलीजुली अवस्था है इसलिए यहाँ उसका पृथक से निर्देश नहीं किया है यानी मुनिराजों को कषाय केवल वो प्रमाद कषाय में आ गया और नीचे के गुणस्थानों में असंयम भी आ गया वेदनीय का केवल योग हेतु भी बंद होता है इसलिए उसके बंद के हेतु चार कहे हैं शेष छह कर्मों का केवल योग हेतु बंध नहीं होता इसलिए उनके बंध के हेतु तीन के हैं यानी मात्र योग से बंधने वाली वो प्रकृतियां नहीं है यहाँ आयु कर्म का किम निमित्त तक बंध होता है इसका निर्देश नहीं किया कारण कि उसका सार्वकालिक बंध नहीं होता यहाँ इतना विषय जानना चाहिए कि जहाँ मिथ्यात्व बंध का हेतु है वहाँ शेष सब है क्या कहना चाहते हैं कौन से चार हेतु है मिथ्यात्व असंयम या हाँ कषाय और योग हाँ जहाँ योग है वहाँ सब है यानी सब होते ही ऐसा नहीं जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ सब है ऐसा ले लो जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ सब है योग है वहाँ सब नहीं है योग अकेला भी हो सकता है जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ आगे के सभी है मिथ्यात्व नहीं है जहाँ असंयम है तो असंयम है तो ऊपर के तीनों है, पर असंयम है वहाँ मिथ्या तो होगा भी या नहीं भी होगा। जहाँ कषाय है, कषाय है तो यहाँ वो योग है ही है, परंतु कषाय है तो मिथ्या तो असंयम होगे भी नहीं भी होगे। इस तरह से जहाँ योग है वो अकेला भी हो सकता है, केवल कषाय के साथ होता है, असंयम और कषाय के साथ होता है, और चारों के साथ। इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन है। देखो अभी पढ़ेंगे यहाँ क्या कहते हैं, आयु का हमेशा बंध नहीं है इसलिए उसको छोड़ दिया यहाँ पर। यहाँ कौन से निमित्त से, उसके हेतु क्या है? तो जो मिथ्या दृष्टि को बंधेगा तो मिथ्या तो भी उसका हेतु है ना, क्योंकि अभी नरकायु बांधने के लिए तो मिथ्या तो नहीं बंधेगी। इस तरह से कारण कि उसका सार्वकालिक बंध। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि जहाँ मिथ्या तो बंध का हेतु है वहाँ शेष सब है। असंयम के सद्भाव में मिथ्या तो है भी और नहीं भी है, किंतु कषाय और योग अवश्य है। कषाय के सद्भाव में मिथ्या तो और असंयम है भी और नहीं भी है, किंतु योग अवश्य है। योग के सद्भाव में प्रारंभ के तीन है भी और नहीं भी है। ये समझ में आई ना इसका अर्थ? अब आगे बढ़ते हैं। पहला प्रत्ययानुगम हुआ, अब विपाक देश कहते हैं। विपाक देश की अपेक्षा छह कर्म जीव विपाकी है, यानी उसका फल किसमें मिलता है? जीव विपाकी। आयु कर्म भव विपाकी है, यानी उसमें भव निश्चित होता है उसके उदय में। तथा नाम कर्म जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी और क्षेत्र विपाकी है। क्षेत्र विपाकी में किसको लेना? अनुपूर्वी को लेना, प्रत्यानुपूर्वी को। वो केवल विग्रह गति में, मोड़ वाली गति में ही उसका उदय होता है। और बाकी नाम कर्म में कुछ जीव विपाकी और कुछ पुद्गल विपाकी, यानी टोटल कर्मों के विपाक की अपेक्षा अगर भेद करेंगे तो हम क्या कहेंगे? जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। ऐसे चार भेद होते हैं, वो हमने कर्मकांड में भी देखे थे उसको। यहाँ तो मूल प्रकृतियों पर ही घटित करना है, उत्तर प्रकृतियों की बात यहाँ नहीं लेनी है।
नाम कर्म में जीव विपाकी कौन से कौन से?
मैंने क्या कहा? यह मूल प्रकृतियों की बात। नाम कर्म में जीव विपाकी कौन कौन सी है?
अच्छा,
जीव
विपाकी,
भव विपाकी,
क्षेत्र विपाकी, ये तीन चार प्रकार है। भव विपाकी आयु है ना,
सेकंड नंबर पे बताएं।
आयु बहु विपाकी है और नाम को छोड़कर बाकी जो है छह कर्म है। होता ही नहीं नाम कर्म में भव विपाकी, अन्य किसी कर्म में भव विपाकी नहीं
है। वो इसका
उसका उदय किसमें निमित्त होता है?
उदय किसमें निमित्त होता है?
विपाक है ना उदय। अब घाती कर्म तो डायरेक्ट जीव के गुणों का ही साथ संबंध है, उसका निमित्त जीव के साथ ही होता ही होता है। वेदनी में भी सुख दुख का निमित्त बनता है, वो भी है उसके अंदर। अब गोत्र में भी उच्च गोत्र, निज गोत्र, वो सब ये सारे जो है जीव विपाकी। नाम कर्म में जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी दोनों प्रकार के प्रकृतियां, यानी उत्तर प्रकृतियां, उसके भेदों में हम बाद में देखेंगे। दोनों को ले लेना वापस। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है, आहार मार्गणा में क्षेत्र विपाकी होगी कि नहीं? कोई
आहार कार्यक्रम में क्षेत्र विपाकी, वहाँ पे जो विक्रिया करते हैं वो क्षेत्र विपाकी की अपेक्षा होगा।
अनुपूर्वी का उदय होगा तो ही क्षेत्र,
पर वहाँ पे जो क्षेत्रांतर होता है
कौन सा?
हाँ, विक्रिया की अपेक्षा,
विक्रिया की
वो
केवल क्षेत्रांतर होना, उसको क्षेत्र विपाकी नहीं कहते।
आहारकों में
मुझे प्रश्न, अनाहारकों में तो उदय होता है, अनाहारकों में तो होगा, आहारकों में कैसा होगा? उसका उदय ही नहीं है ना,
मुझे समझ नहीं आता।
आहारक और अनाहारक, आहारक कहने क्या? बिना मोड़
वाले,
तो उनके गत्यानुपूर्वी का उदय ही नहीं होगा। बंद होगा। यहाँ बंध की अपेक्षा अगर बात करते हैं तो ये क्षेत्र विपाकी कर्म बंद है जरूर, क्योंकि जब गति हर समय बनती है तो गत्यानुपूर्व भी हर, पर उसका उदय नहीं होगा। नहीं समझे? उदय कब है? मोड़ वाली गति में।
क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है?
नहीं, उसको क्षेत्र विपाकी कहते ही नहीं। एक आप ही ने उत्तर दिया था गत्यानुपूर्वी।
हाँ,
तो गत्यानुपूर्वी से क्षेत्रांतर होता है?
नहीं।
गति से क्षेत्रांतर होता है?
नहीं।
आप चेंबूर से अभी आए यहाँ पर क्षेत्रांतर करके अभी आगे तीसरी प्ररूपणा प्रशस्त और अप्रशस्त प्ररूपणा का अपेक्षा चार घाती कर्म अप्रशस्त होते हैं। वेदनीय आयु नाम और गोत्र प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों प्रकार के होते हैं। हमने तो लंबी लिस्ट देखी थी ना वो पंचलब्धि पुस्तक में भी, साता असाता में तो समझ में ना, साता प्रशस्त असाता प्रशस्त आयु में मालूम है।
हाँ, और मनुष्य नहीं,
तीनों आयु
प्रशस्त
है, नरकायु अप्रशस्त। अब नाम और गोत्र में भी देखे थे हमने, नाम कर्म में तो बहुत सारी लिस्ट है, उसमें प्रशस्त अप्रशस्त जो दोनों बाजू है ऐसी कौन सी प्रकृतियां?
दोनों बाजू,
हाँ, जो प्रशस्त भी है वो वर्ण चतुष्क, प्रशस्त वर्णादि और अप्रशस्त वर्णादि दोनों, और दोनों का बंध एट ए टाइम होता है, दोनों होता है। ये लास्ट टाइम हमने उस बहुत उसको दिमाग खाया था वो प्रश्न में, प्रशस्त वर्णादि और अप्रशस्त वर्णादि।
तो
आयु नहीं, वर्णादि
नहीं, कैसे होगा? आप बोलते दोनों
हर समय, कोई भी आयु क्यों न बंध, आयु से कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, दोनों, क्योंकि प्रशस्त अप्रशस्त क्या है? वर्णादि, यानी शरीर के वर्ण संबंधी है ना, उसके वर्ण उस जाति के परमाणु को ग्रहण कर, तो अनंत परमाणु में कुछ प्रशस्त भी है, कोई अप्रशस्त भी है ना।
और आठवें गुण स्थान तक भी अप्रशस्त
दोनों का बंध है। हाँ, इतना होगा जब शुभ भाव हो गए तो प्रशस्त का यानी उसका अनुभाग में डिफरेंस होगा, अनुभाग उसका ज्यादा बंधेगा और प्रशस्त का कम बंधेगा, और जब संकलेश में उसका अनुभाग ज्यादा होगा इसका कम होगा। यहाँ तो अनुभाग में सोचना है। देखो विशेषार्थ, ये विशेषार्थ हुए, विशेषार्थ से करना, अन्यत्र जिनकी पुण्य और पाप संज्ञा कही है उन्हीं के यहां प्रशस्त और अप्रशस्त संज्ञा दी है। जिसको हम कहते हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म, ऐसे दो शब्द आते हैं ना, तो उसी को प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति कहते हैं। चार घाती चाहिए, अघाती लिखा है ना वो घाती करो। चार
अप्रशस्त तो अघाती है ना,
घाती कर्म ज्ञानावन दर्शनावन वो अप्रशस्त है ना, यहाँ विशेषार्थ में पड़ा है। चार घाती कर्मों का अनुभाग बंध अप्रशस्त ही होता है। हमने देखा ना उसकी सारी मूल और उत्तर प्रकृति सारे अप्रशस्त ही है। अप्रशस्त और प्रशस्त तो हम अनुभाग की अपेक्षा ही कहते हैं, है ना? तथा शेष चार कर्मों का अनुभाग बंध दोनों प्रकार का होता है। शेष चार ने अघाती का, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। आशय यह है कि शेष चार कर्मों के अवांतर भेदों में, यानी अघाती कर्मों के अवांतर भेद यानी साता के साता असाता है वगैरह वगैरह, उच्च नीच गोत्र गोत्र के हैं, नाम के तो बहुत सारी प्रकृतियां हैं, उनमें कोई प्रशस्त प्रकृतियां होती है और कोई अप्रशस्त। जैसे नाम कर्म है गति नाम कर्म, दो गति प्रशस्त है, दो गति अप्रशस्त है, आयु में तीन आयु प्रशस्त थी, एक आयु अप्रशस्त थी। तो जाति में पंचेंद्रीय जाति प्रशस्त है, बाकी चारों जाति अप्रशस्त है, इस तरह से समझ लेना। सब में सारे शरीर अंगोपांग प्रशस्त ही है। देखो प्रशस्त प्रकृति है ना, अरविंद के आए होंगे,
वो
प्रमाण नाम कर्म है। अंगोपांग में नहीं आता, और उसको अप्रशस्त हमने माना है, उसमें
क्या
उसको अप्रशस्त नहीं कहते। नहीं रहने दो, भिजले का
हाँ।
ओ
इधर नीचे भी मैं आया था
मेरे को भी पहली बार
आप लोग मेरे भी आपको भी
इससे इतना फर्क
इसलिए इतना वो नहीं हो रहा है
सबको वही आता है ना
सुबह से
एक घंटा तो उसमें गया
पूरा खोलकर बहुत ट्राई किया सुबह से और ऐसा है कि नीचे से कुछ डाल भी नहीं सकते उसके अंदर वो वाला है ना उधर प्लास्टिक का ऐसा गोला बैठ बेसिन पर वो उधर जाएगा हाँ चलो
जब भी प्रशस्त प्रकृति का बंद होता है तभी अप्रशस्त का भी साथ में बंद होता है तो यहाँ पे तो इसे
देखो देखो प्रशस्त कहाँ होता है तो अप्रशस्त एक ही प्रशस्त और अप्रशस्त बन रही है जब देवगति बन रही है तब नरक गति बन रही है
नहीं नहीं तेरा क्या है
पर ज्ञानावरण भी सारे बन रहे हैं ना
नहीं
कहाँ तक बन रहे हैं
दसवें तक
हाँ जब मोहनीय तो नौवे तक बाकी तो दसवें तक बन रहे तो आघाती के प्रशस्त बन रही है कि नहीं वहाँ
नहीं मेरा क्वेश्चन खाली नाम कर्म में जब ये नरकायु बनती है तभी नहीं जब
आयु नाम कर्म नहीं
अच्छा
गति नाम कर हो लेगा
मैं टीवीएस गति और टीवीएस
टाइम
पे
करते हैं आपने जो क्वेश्चन पूछा वो छह अंग तो क्या है वो अप्रशस्त प्रशस्त ऐसा कुछ नहीं
ऐसा उसमें क्या है वो हमने उसको अप्रशस्त माना है ना उसकी संख्या जितनी है उतनी नहीं है बस इतना ही उसमें प्रशस्त अप्रशस्त कुछ बात ही नहीं उसके अंदर देखो आगे बढ़ेंगे
अनुभव की अपेक्षा जब साता विद्या का उत्कृष्ट बंध होता है ऊपर के गुण स्थान में तभी विशुद्धि है इसीलिए उत्कृष्ट बंध होता है अनुभव कि वहाँ पे मिथ्यात्व और तीन का अभाव है इसीलिए उत्कृष्ट बंध होता है क्योंकि जब ये मेरे को कल से क्वेश्चन आ रहा था तो मैं पूछने पर थोड़ा
तो उत्कृष्ट संकलेश मिथ्या दृष्टि को ही होगा
हाँ। नहीं बराबर है पर वहाँ पे जो ज्ञान सातावेदने का उत्कृष्ट अनुभव बनता है तभी तीन का
वहाँ ना मिथ्या तो है ना अविरति है
तो तीन का अभाव इसीलिए उत्कृष्ट बन होता है
वो अभाव नहीं वहाँ विशुद्धि ज्यादा बन अभाव की बात क्यों रहे वहाँ विशुद्धि है कि नहीं
पर विशुद्धि में तो
केवल विशुद्धि यानी अभावात्मक ही कारण होता है क्या वो सद्भावात्मक कुछ होगा ना विशुद्धि इटसेल्फ है ना वो तत्व ज्ञान की जो विशुद्धि है ही है एकदम मंद कषाय रूप विशुद्धि भी है वहाँ पर
नहीं मेरा क्या सोचना था कि विशुद्धि है वहाँ पे तो उपयोग तो अंतरंग में है तो वहाँ पे अंतरंग में उपयोग है तो वहाँ
अंतरंग में उपयोग है वहाँ बुद्धिपूर्वक राग चल रहा है कि नहीं
अच्छा,
अनुभाग बंद हो रहा है बिना कषाय के हो रहा है ख्याल में ना
तो बुद्धिपूर्वक राग का इतना उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है अनुभाग
हाँ पर वो इतना मंद है ना इसीलिए उत्कृष्ट अनुभाग बन रहा है बंद हो रहा है ना उसमें क्या वो तो अच्छा थोड़ा ही है
उत्कृष्ट अच्छा नहीं है इसलिए वही अपेक्षा
पर राग है ना तो बंद होगा ही होगा अब जो 11वें 12वें 13वें में सातावेदनी बन रहा है उसमें कोई अनुभाग नहीं है हाँ, आगे बढ़ते हैं
अनुभव में जहाँ पर विशुद्धि ज्यादा है वहाँ पर अनुभव ज्यादा बन
उसमें प्रशस्त है कि अप्रशस्त सोचना पड़ेगा ज्ञानावरण का देखो श्रेणी में ज्ञानावरण का बिल्कुल मंद में मंद अनुभव होगा अंतिम समय में दसवें के अंतिम बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल उसका अनुभव है सातावेदनी का मैक्सिमम पॉसिबल है यशस्कीर्ति का मैक्सिमम पॉसिबल है उच्चगोत्र का मैक्सिमम पॉसिबल हाँ क्योंकि वहाँ हमको सोचना है प्रशस्त प्रकृतियों का विशुद्धि में उत्कृष्ट अनुभाग होता है और अप्रशस्त में जघन्य होगा यहाँ स्थिति में तो हमको बिल्कुल आंखें बंद करके, जहाँ संकलेश ज्यादा है वो तीन आयु को छोड़ो, बाकी संकलेश ज्यादा है तो स्थिति उत्कृष्ट थी।
अभी जो मिथ्या थी कि हम लोग की जो बनती है प्रकृति और उसके साथ अनुभव होता है तो वो तो
उसके साथ है ना, अनुभव विधान बनता थोड़ी है।
नहीं नहीं, जो अभी
हर समय जो बन रहा है तो उसमें भी विशुद्धि और संकलेश कम ज्यादा होते है कि नहीं होते। जैसे ज्ञानावरण का हम क्या कहते हैं, आप शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, ज्ञानावरण तो हर समय बन रहा है, तो हर समय बन रहा है तो स्वाध्याय के काल में मंद अनुभव बनेगा कि नहीं। स्थिति कितनी बनती मान लेते अंत कोड़ा कोड़ी जो कुछ यथायुग बनेगी, परंतु अनुभव कैसे बनेगा, तो मंद अनुभव बनेगा। और वही संकलेश के काल में क्या बनेगा, या अन्यत्र हम दुनियादारी कर रहे तब अधिक बनेगा और खोटा परिणाम करेगा वो, मिथ्या तो तीव्र मिथ्या तो चलेगा तो क्या होगा, तीव्र और ज्यादा अनुभव बनेगा इस तरह से।
तो प्रशस्त में उत्कृष्ट अनुभव बनता है वो भी संसार का कारण है।
सभी प्रकृतियां संसार के ही कारण बंद हो रहा है ना, अनुभाग बंद किससे हो रहा है, स्थिति और अनुभाग कषाय से बनता है। कषाय में मिथ्या तो अविरति प्रमाद कषाय, प्रमाद को कौन करके यहाँ जो प्रत्यय बताए मिथ्यात्व अविरति यानी असंयम और कषाय, इससे बंद हो रहा है तो संसार का कारण है कि नहीं आप ही नक्की करो। क्योंकि प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो, क्योंकि इसीलिए तो शुभ भाव तो लोगों को अच्छा लगता है ना। क्यों, अभी कुछ जो प्रतिकूलता है ना, ये शुभ भाव करो तो ये प्रतिकूलता मिट जाएगी, ऐसा उसके पीछे का अभिप्राय भी पड़ा है, यानी वो तो करना चाहता है। यानी अभिप्राय में क्या पड़ी हमारी बात, कि कहीं में वो अच्छा लगता है कहीं पर।
नहीं, वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि जब अंतरंग में इतनी स्थिरता है तभी भी अभिप्राय में ये
अभिप्राय नहीं, अभिप्राय में होगा तो चौथा गुण स्थान नहीं आता। अभी अभिप्राय की क्या बात है, अभिप्राय नहीं मान्यता, मान्यता गलत हो तो चौथा गुण स्थान भी प्रकट नहीं होगा, वहां तो श्रेणी की बात चल रही है।
अभी मान्यता हम लोग सबकी सही है,
नहीं, नहीं वो नहीं, मान्यता नहीं, प्रतीति वाली मान्यता होती है। आपने नक्की किया है, ज्ञान में नक्की किया है, ज्ञान में आपने नक्की किया कि ये बराबर नहीं है, परंतु मान्यता प्रति अनुभव पूर्वक प्रतीति होती है, वो श्रद्धा कहलाती है।
सात तत्वों की बात करें तो जिसको शुभ अच्छा लगता है उसके तो आश्रव तत्व संबंधी,
हाँ वो तो वहाँ मान्यता में अभिप्राय में भूल पड़ी है
हमारी मान्यता।
ऐसा नहीं, वो अभी कभी कैसा लगता है, हम लोग सब समझते हैं कि शुभ भाव दोनों बन के कारण है, शुभ अशुभ दोनों, वो भी अभी सब समझ में आ गया है।
हाँ, वो समझ में आया तो यहाँ तक आप पात्रता यहाँ तक पहुँची हुआ,
आपका ज्ञान सही है आगम के अनुसार है, लेकिन आपकी श्रद्धा
नहीं है,
वही अटके हूँ।
वो प्रतीति कब कहलाएगी, अनुभव पूर्वक कहलाएगी, तभी वो सम्यक प्रतीति हो गई। तब तक क्या है, कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिप्राय में कहीं ना कहीं पड़ा है। ये जो श्रद्धा श्रद्धा कह रहे हैं वो ज्ञान की पर्याय
है,
ये आप जो श्रद्धा कह रहे हैं वो,
हाँ
वो प्रतीति अनुभूति जो है वो एक साथ होती है, अनुभूति और प्रतीति, वो आप ऐसे बता नहीं सकते, परंतु तब वो सम्यक हो गई। और तब तक जो है हमने आगम के अनुसार हमने नक्की कर दिया है, इन्हें हमको अंदर बराबर भाषित होता है, नहीं ये जो बता रहे यही बात सत्य है, इतना तो नक्की कर दिया है, अब इससे आगे बढ़ना है। यानी यहाँ तक लोगों को तो यहाँ तक भी नहीं होता है, वो डामाडोल रहते हैं, अभी यहाँ तक आए नहीं, वो पात्रता है इतनी, और जो कह रहे वो सब समझ में आता है।
तो नक्की होने के बावजूद भी श्रद्धा नहीं,
अभी श्रद्धा क्योंकि जैसे नवे ग्रवेक में गए हैं तो क्या क्या रह गया उनका, वो सूक्ष्म कहीं राग से एकत्व पड़ा है,
तो देह बुद्धि उन्होंने नक्की कर दिया।
ज्ञान में तो सारा आगम पढ़ रहे हैं ना वो, और वो सच्चे देव गुरु शास्त्र को ही मान रहे हैं, कोई कुदेव कुछ
जो नौवे ग्रेक में गए हैं और ये सच्चे देवगुरु के हैं तो उसको अभी भी मिथ्यात्व ही है ना वो।
हाँ मिथ्यात्व है, गृहित मिथ्यात्व नहीं है, गृहित मिथ्यात्व लेकर तो कोई मुनि भी द्रव्यलिंगी भी नहीं कहलाएगा, वहाँ तक गए हैं तो कहीं वो तो राग के साथ शरीर की क्रिया के साथ एकत्व पड़ा है उनका, उससे लाभ मानते हैं, मिथ्यात्व तो है ही है ना। वहाँ जो है ग्रेवेक के देव मिथ्या दृष्टियों से सम्य दृष्टियों की संख्या संख्यात गुणे हैं। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखो विशेषार्थ की चौथी लाइन चार कर्मों के अवांतर भेद, अवांतर भेद ने उसके उत्तर प्रकृति है। कोई प्रशस्त प्रकृतियां होती है कोई अप्रशस्त, इसलिए यहाँ पर इन चार कर्मों को दोनों प्रकार का कहा है। यहाँ हमारा मूल प्रकृति का कथन है इसलिए उसमें डिटेल में नहीं गए, वो तो आने वाला ही है उत्तर प्रकृति के में सब देखना ही हमको। इस अर्थपद के अनुसार स्वामित्व दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओव और आदेश। ओव से ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंद का स्वामी कौन है। अब ये कहे अप्रशस्त ही है इसलिए इसमें कहना बराबर, जिसमें दोनों प्रकार होते हैं ना मूल प्रकृति में दो, तो उसमें वो कहाँ क्या होता है उसको सोचना पड़ेगा पहले तो इसका बात बताने के। तो कहते पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार, क्योंकि अनाकार उपयोग में तो उनके ना विशुद्धि ज्यादा है ना संकलेश ज्यादा है। जागृत नींद में भी ऐसा ही है, संकलेश और विशुद्धि दोनों ही ज्यादा नहीं होती है। नियम से उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित। उत्कृष्ट संकलेश कह देते फिर अनुभाग बंध उत्कृष्ट करने वाला क्यों कहा, क्योंकि एक ही परिणाम से अलग अलग अनुभाग बंध हो सकते हैं, जैसे स्थिति अलग अलग बन सकती है इसमें अनुभाग भी अलग अलग बन सकते हैं। तो उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव यानी चारों गतियों के जीव ये उत्कृष्ट बंध कर सकते हैं। देव है इसलिए नहीं करते ऐसी कोई बात नहीं है। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म, अब इसमें प्रशस्त अप्रशस्त दोनों होते हैं, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। तो सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान के अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक, क्षपक को लिया क्योंकि वेदनी में से साता वेदनी है, नाम का वो यश कीर्ति है और गोत्र का उच्च गोत्र है, वो दसवें के अंत तक बनती है। तो इनका अनुभाग यानी असाता से भी साता का उत्कृष्ट है, वो तो अनुभाग के जो कुछ अल्प बहुतों में आ जाएगी बात नहीं? अभी तो हमको ये केवल पढ़ना है, यहाँ पर बाद में उसको नक्की करेंगे। वो स्वामी उसका उत्कृष्ट का स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अब आयु इन जनरल है तो आयु में से किसका अनुभाग उत्कृष्ट होगा उसकी बात करेंगे। तो साकार जागृत तत्प्रायज्ञ विशुद्धि युक्त, अब विशुद्धि है तो देवायु को ले लेंगे, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अप्रमत्त संयत जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। प्रमत्त में शुरुआत होती है अप्रमत्त तक बनती रहती है, और अनुभाग उसका जो अप्रमत्त में विशुद्धि ज्यादा है परंतु तत्प्रायज्ञ विशुद्धि ली, क्योंकि आयु का बंध अति विशुद्धि में अति संकलेश में नहीं होता, ये तत्प्रायज्ञ शब्द लगाया।
तो इसका अनुभव जो देवायु बांधेगा जो मनुष्य जी उसका अनुभव सबसे ज्यादा कंपेयर करेंगे तो
अप्रमत्त, क्योंकि प्रमत्त से शुरुआत हुई है। स्थिति का बंध तो पहले समय में लिया क्योंकि आबाधा को इंक्लूड करना था, और यहाँ अनुभाग विशुद्धि जहाँ ज्यादा है उसका अनुभाग ज्यादा बनेगा। इसी प्रकार ओघ के समान, ओघ के समान यानी चारों घाती चारों अघाते में कहाँ कहाँ घटित होगी, तो जहाँ वो अप्रमत्त संयत मार्गणा होगी जिसमें उसमें ये सभी बताएंगे। तो पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांच मनोयोगी पांच वचन योगी काय योगी औदारिक का योगी, लोभ कषाय वाले, चक्षुदर्शनी और चक्षुदर्शनी, क्योंकि लोभ कषाय वाले ना वो, क्योंकि सूक्ष्म सांप्रदाय के अंतिम समय तक लोभ कषाय वाला है। भव्य संगी और आहारक जीवों के जानना चाहिए। मनुष्य होगा देवायु में, मनुष्य होगा और बाकी भी श्रेणी में जो है वही, तो यहाँ मनुष्य को वही मैं देख रही थी, मनुष्य को क्यों नहीं लिया। मनुष्य में कहेंगे कि
मनुष्य पर्याप्त ही
लेते हैं,
उसके समान है, मनुष्य ही लेना
पड़ेगा,
क्योंकि जहाँ सामान्य मनुष्य भी होगा।
मनुष्य द्वीक सामान्य और मनुष्य पर्याप्त,
मनुष्य नहीं को क्यों नहीं दिया।
हाँ मनुष्य द्वीक को भी ले सकते,
सद्विक कह रहे ना
सामान्य मनुष्य,
क्योंकि मनुष्य नहीं कहेंगे तो गुणस्थान 14 है, स्त्री वेदी कहेंगे तो गुणस्थान 9 है।
क्या हम लोग एड करते हैं कि नहीं?
क्यों
सामान्य मनुष्य
नहीं, वो जो है उसमें तो कहेंगे ओके समान है। देखो देखो क्यों यहाँ चारों गति का लिखा है ना, मनुष्य में ऐसा चारों गति का है
नहीं,
ये कथन पूरा पूरा लागू होना चाहिए। स्वामी का कथन क्या है? चारों गति का
है। पर यहाँ पे चारों गति के लिए ये औदारिक शरीर वाला बताया, तो वो तो खाली
कहाँ औदारिक शरीर वाला,
औदारिक शरीर वाला औदारिक का योग वाला बताया, तो वहाँ पे भी चार गति घटित नहीं होती है।
आई थिंक ये
सिर्फ आयु के लिए है ना? नहीं नहीं नहीं, सभी प्रकृति के लिए है।
चारों विशेषण
ओग के समान, ओग के समान जो बताया, हाँ औदारिक का योगी में भी ये बात नहीं घटित होती है, वहाँ तो केवल दो ही गतियाँ घटित हो जाएगी।
इसलिए मैंने पूछा कर ली।
देखो इन मार्गणों में चारों गतियों और 10 गुण स्थानों की प्राप्ति संभव होने से ऊपर रूपना बन जाती है, तो वो काय योगी में चारों गतियां नहीं होती है, यथा योग्य है, इसलिए मनुष्य को भी नहीं लिया है, मनुष्य को बाद में ओके समान बताएंगे। ना औदारिक काय योगी की बात देख रही थी, औदारिक कायोगी में ओके समान बता दिया, पर उसमें दो गतियां है, दो गतियां यानी स्वामी दो गतियों के जो कहेंगे। अब आदेश से आगे बढ़ेंगे ना? नहीं हमने बोला ऐसा ऐसा कर रहे हैं। साकार उपयोग में आ रहे थे जागृत अवस्था में। आदेश से नरक गति में घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब यह नरक गति तो स्पेसिफिक बताइए, यहाँ तो बाकी तो पंचेंद्रिय है, वो संधि है, वो तो बताने की जरूरत नहीं, पर्याप्तियों से पर्याप्त ऐसा कहेंगे यहाँ पर, मिथ्या दृष्टि भी कहना पड़ेगा, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित। ये उत्कृष्ट संकलेश नहीं कहा यहाँ उन्होंने, मैं समझना, यानी संकलेश भी उत्कृष्ट है और अनुभाग बंध भी उत्कृष्ट है। नहीं, चार घाती कर्मों की बात चल रही, अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि नारकी घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, ये घाती की बात है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी उसमें भी प्रशस्त प्रकृतियों को यानी साता वगैरह को लेना तो समय दृष्टि को विशुद्धि ज्यादा होगी, तो कहते साकार उत्कृष्ट संकलेश होना चाहिए था, ऊपर उन्होंने प्राकृत में नहीं इसलिए नहीं डाला है, ओग में है ना, उत्कृष्ट संकलेश युक्त डालना पड़ेगा, यानी संकलेश भी उत्कृष्ट है, अनुभाग बंध भी उत्कृष्ट है। अब हम वेदनीय नाम गोत्र की बात करें, उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सम्य दृष्टि नारकी, यह सर्व विशुद्ध लिया क्योंकि इनके प्रशस्त की अपेक्षा से उनका उत्कृष्ट अनुभाग होगा। उक्त तीन होते हैं सातवें नरक तक होती है, हाँ वहाँ लेना पड़ेगा, वो हमने सोचा था परंतु इसे स्पेसिफिक कुछ बताने, सर्व विशुद्ध उन्होंने ये पूछा नारकियों में अनंतानुबंधी की विसंजना होती है क्या, होती है भले वो सातवें नरक का नारकी भी कौन हो, होती वहाँ भी तीन करण परिणाम है, विशुद्धि वहाँ ज्यादा होगी, पर कहीं पर उन्होंने ऐसी बात स्पेसिफिकली बताई नहीं है, वो तो हमने सोची थी। तो कहते तीन कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, अभी आयु रहेगी, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, साकार जागृत तत्प्रायग विशुद्धि युक्त, तत्प्रायग शब्द डाला ना, सर्व विशुद्ध नहीं डाला, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सम्य दृष्टि नारकी। देखो नारकी में सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि है, स्थिति की अपेक्षा पूर्व कोटि का बंध तो कोई भी कर सकता है, पर यह ना अनुभाग हाँ तो विशुद्धि सम्य दृष्टि की ज्यादा है, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में, यहाँ तो मिथ्या दृष्टि बंद करता है, आयु का बंध सम्य दृष्टि करता ही नहीं, और मिथ्या दृष्टि वो भी तीर्यन चाहिए, यहाँ तो आयु इन जनरल लेना है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथ्वी में आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत तत्प्रायग विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वो भी छह महीने पहले ही उसका आयु बंध का अवसर आएगा, कभी भी बांध सकता है, मिथ्या दृष्टि बांधता है सातवें नरक में, पर तत्प्राय विशुद्धि वाला लेना है।
तो तिरंजय का उत्कृष्ट अनुभाग खाली सातवें नरक वाला ही बांध सकता है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे दूसरे में मनुष्य आयु बंधेगी विशुद्धि में।
यह आपने कैसे बना,
क्योंकि यहाँ पे खाली तीरियन चरण बनती है, तत्प्राय विशुद्धि के परिणाम है जो मध्यम परिणाम है वहाँ पे,
तो तीरियन आयु का उत्कृष्ट कौन बांधेगा जो तीन पल्ले की आयु बांध रहा है,
नहीं अनुपात में उत्कृष्ट अनुपात तीन पल्ले में बंधेगा कि यहाँ पे बंधेगा,
आप ही को
मेरे को ऐसे लगा कि यहाँ
निकाल के देखो, उत्तर प्रकृति में निकालो ना, इसी पुस्तक में होगी ना उत्तर प्रकृति, इंडेक्स देखो, इन्हीं को नारकी कोई उत्कृष्ट अनुभाग बंधेगा कि नहीं बंधेगा, उत्तर प्रकृति अनुभाग बंध संज्ञा काल स्वामित्व निकालो स्वामित्व, उत्कृष्ट का चाहिए ना
अनुभाग का उत्कृष्ट,
185 से 212 ओग में तीर्यन चायु का क्या है, पेज नंबर 188
ये नीचे से,
हाँ नीचे से क्या है,
नीचे से सातवीं लाइन में तीन चार मनुष्य का वही भंग है,
वही भंग है ना, कौन सा
वो तीन पल्ले वाला है,
मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तीर्यंच करता है नरकायु वगैरह का, और तीर्यंच भी वही करता है, और वही करता है, इतनी विशेषता है, ये यथायोग्य विशुद्ध परिणाम वाला और उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला जीव, और वहाँ हमने लिखे रखा है तीन पल्ले वाली तीरियन चाहिए मनुष्य, उसका अर्थ क्या है? मनुष्य या संगी पंचनी तीरियन करेगा जो भोगभूमि की आयु बांधने वाला है नेचुरली।
तो मनुष्य का भी उत्कृष्ट अनुभाग तीन पल्ले में बनेगा
नेचुरली। अभी आप बारंबार उत्तर प्रकृतियों की सोच रहे, पहले यहाँ नक्की करो मूल प्रकृतियों में। हाँ बिल्कुल सब आने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो नरक में हम देख रहे थे वो नारकी के लिए वो उत्कृष्ट है, वो के लिए वो तीरियन चायु का उत्कृष्ट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। आदेश में हमने देखा सातवीं पृथ्वी वाली बात पढ़ ली, अभी तीरियंचों में घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? संगी, मिथ्या दृष्टि, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार, जागृत, सर्वसंक्लेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यतर पंचेंद्रिय तीरियंच घाती कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। सर्व संक्लेश यानी उत्कृष्ट संक्लेश। अभी क्योंकि चारों गतियों में यही उत्कृष्ट बंद करने वाला यही था। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी यहाँ तो पांचों नारकी में चौथा गुणस्थान वाला लिया था, समय दृष्टि इतना ही कहा, या तो संयता संयत कहना पड़ेगा। तो साकार, जागृत, सर्व विशुद्धि युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यतर संयता संयत तीर्यंच उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। ये तो आसान है ना समझना। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो संगी, मिथ्या दृष्टि, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, साकार, जागृत, तत्प्रायः संक्लेश लिया। संक्लेश लिया क्यों? इसको नरकायु बांध रहे, तीर्यंचायु से नरकायु का अनुभव यहाँ उत्कृष्ट होगा। ख्याल में आई बात? ओघ में देवायु का उत्कृष्ट था क्योंकि अप्रमत्त भी बांधता था, और यहाँ तीर्यंचों में उत्कृष्ट बंध जो है क्योंकि मनुष्यायु तीर्यंचायु बंधेगी तो भी कितने तीन पल्ले की बंधेगी, देवायु भी बंधेगी तो पांचवें गुणस्थान वाला भी ऊपर जाएगा, 22 सागर वाला जाएगा, 16वें स्वर्ग तक जाएगा। हाँ, और ये नरकायु बांधेगी। हमको स्थिति की अपेक्षा नहीं, परंतु थोड़ा हम सोच सकते हैं उसको। तो नरकायु का उत्कृष्ट बंध होगा उसके लिए। थोड़ा संबंध है क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति आयु, तीन आयु की उत्कृष्ट स्थिति कब बनती है? विशुद्धि
में।
तो इनकी विशुद्धि में कितनी बन रही, तो यहाँ हम स्थिति की अपेक्षा बात करेंगे। और नरकायु संक्लेश में बनती है, वो 33 सागर की बनती है, यानी उसका अनुभव वहां अधिक होना ही चाहिए। ऐसे भी आप 33 सागर और 33 सागर नरकायु में कंपेयर करेंगे, वो तो 64 वो तो पूरा है ना, अल्पभूतों वाला 64 पद, उसमें वो ज्यादा क्लियर होगा कौन सी, यानी ओक की अपेक्षा कहाँ कौन सी प्रकृति अधिक अनुभाग वाली, क्योंकि जहाँ प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों होती है वहाँ हमको वो काम आता है।
पर आयु कर्मों में हम लोग इसे ले सकते हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे स्थिति ज्यादा बनती है वहाँ पे अनुभाग ज्यादा बन जाएगा? नहीं,
ऐसा ही होगा। नरकायु में तो क्योंकि संक्लेश में बनती है, स्थिति भी ज्यादा है, अनुभाग भी ज्यादा है।
नहीं, खाली यहाँ पे
और जो प्रशस्त प्रकृति है वो विशुद्धि में बनती है, स्थिति भी ज्यादा है, अनुभाग भी ज्यादा है।
नहीं, मनुष्य आयु प्रशस्त प्रकृति है और हम लोग
तीनों आयु प्रशस्त है।
नहीं, मनुष्य आयु के लिए मेरे को ये प्रश्न आ रहा था क्योंकि तीन पल्ले में अनुभव ज्यादा बनता है, तो क्या सभ्य दृष्टि जब एक पूर्व कोटि की आयु बांधेगा तभी उसका अनुभव कम बनेगा? क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृति।
हाँ, तीन पल्ले वालों को लेना, क्योंकि अभी हम इनको निकाल के दिखा था ना।
हाँ।
उसमें मिथ्या दृष्टि को ही लिया था,
तो ये
मिथ्या दृष्टि को ही लिया
था। विशुद्धि ज्यादा होगी,
मिथ्या दृष्टि मनुष्य या त्रिरंज को लिया था। देखो ये लास्ट लाइन हमने अभी पढ़ी 8 पेज पर, उत्कृष्ट मग में अवस्थित अन्यतर पंचेन्द्रिय तिर्यंच आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक के जानना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट संकलेश विशुद्धि उन्हीं में हो सकती है। यानी तिर्यंचों में जो है उत्कृष्ट अनुभाग वो तो पंचेन्द्रिय में ही होगा। अब पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त जीवों में 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार, जागृत, उत्कृष्ट संकलेश युक्त, ये सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त नहीं कहा। क्यों
अपर्याप्त?
तो उसमें उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर संगी जीव, क्योंकि पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त कहने से संगी भी आ गए, असंगी भी आ गए, इसलिए संगी शब्द डाला। 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, क्योंकि संकलेश उनके ज्यादा होगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी संगी, विशुद्धि में भी संगी को ही लेना। साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध लिया, क्योंकि इनके प्रशस्त कर्मों को लेना है। और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। आयु कर्म के, यह मनुष्य तिर्यंचाई बनती है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? संगी, साकार, जागृत, तत्प्रायग विशुद्ध युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। हाँ, वो तो हम रेफरेंस निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने वो देखा था ना स्वामित्व वाली जो प्ररूपणा है, जगन्य, वो वहाँ जगन्य था। यहाँ पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्त 191 में है। तिर्यंचाई मनुष्यायु आयतप उद्योग, उसमें अल्पभूतव नहीं लिया है, वो अल्पभूतव के प्रकरण में अलग आएगा। अनुभाग के अल्पभूतव के जो पद है ना, वो बात यहाँ नहीं ली उन्होंने, उनमें से किसको ज्यादा है कम है वो बात बाद में आएगी। हाँ, वो तो 5वीं पुस्तक में आ जाएगी, वो यहाँ का विषय नहीं, अल्पभूतव लास्ट में लेंगे। हाँ, मनुष्यायु के लिए
नहीं, पर उत्कृष्ट अनुभाग तो मनुष्यायु के लिए बंधेगा, क्योंकि
विशुद्धि ज्यादा होगी, सर्व विशुद्धि नहीं तत्प्रायोगिक
विशुद्धि में मनुष्यायु बंधेगी।
इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेंद्रिय, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त और त्रस अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विकलेंद्रियों में अन्यतर पर्याप्त जीवों के उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए, क्योंकि विकलेंद्रिय इन जनरल लिया है ना, बाकी तो अपर्याप्त जीव लिए थे, तो उसमें सब पर्याप्तियों से पर्याप्त होने पर उसको ले लेना। मनुष्य त्रिक में ओग के समान भंग है, इतनी विशेषता है कि घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग कुंद का स्वामी कौन है? तो साकार, जागृत, उत्कृष्ट संकलेशुक्त, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है।
तो
ओग से क्या विशेषता बताई? हाँ,
शपक को लिया था,
ना चार घाती कर्मों में क्या लिया था?
चार घाती कर्म
सब पर्याप्त है, पर्याप्त साकार जागृत उत्कृष्ट संतोष वाला वहाँ चार गति का कहा, बस यहाँ इतना ही कहना है। ओग में कथन चार गति वाला लिया था इसलिए विशेषता बताई। मनुष्य त्रिक में सामान्य मनुष्य, मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त, इनमें भी उत्कृष्ट संकलेश किसको होगा? वो पर्याप्त मनुष्यों के होगा, तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त होने पर वगैरह कहेंगे। पर मनुष्य अपर्याप्तों में केवल संकलेश परिणाम वाला लिखना पड़ेगा। मनुष्य अपर्याप्तों की बात तो ऊपर बताइए, पंचनी तीरें अपर्याप्तों के समान, यानी यहाँ सब पर्याप्तियों से पर्याप्त ऐसा लिखना चाहिए था, तो ओके समान बात हो ही गई है। परंतु विशेषता क्यों बताई? ओघ में चारों गति के जीव लिए थे और यहाँ तो मनुष्य की बात है, बस इतनी विशेषता है। सामान्य देवों से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक के देवों में उवरिम हुआ, उपरिम उवरिम प्राकृत है, नारकियों के समान भंग है। वही चार घाती कर्मों का कौन है तो उत्कृष्ट संकलेश वाला सब पर्याप्त से पर्याप्त, वो सब बता देना, क्योंकि चारों गतियों में वही बात होती है ना, मिथ्या दृष्टियों के उत्कृष्ट होगा। हाँ, अनुदिश से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में चार घाती कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब ये तो सम्य दृष्टि है, तो साकार जागृत चार घाती की बात है, उत्कृष्ट संकलेश युक्त उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर जीव चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष स्वामित्व सामान्य देवों के समान है। मिथ्या दृष्टि नहीं, ये तो अनुदिश और अनुत्तर सारे समय दृष्टि है, ऊपर के हैं। ग्रेवेक तक तो उन्होंने मिथ्या दृष्टि को लिया था, यह अनुदिश अनुत्तर की बात है, तो वहां तो सारे समय दृष्टि है।
उसमें भी उत्कृष्ट संकलेश में भी
हाँ, उसमें भी संकलेश विशुद्धि होती रहते वहां उनके योग्य, पर वो उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट कहेंगे उस गुणस्थान में, या जो समझना वहां पर, क्योंकि परिणाम के वेरिएशन होते हैं ना, संकलेश विशुद्धि होते रहते। तो शेष स्वामित्व सामान्य देवों के समान। यानी आयु कर्म सामान्य देवों में भी आयु कर्म का उत्कृष्ट बंध तो समय दृष्टि को होगा, समय दृष्टि देव को, जैसे वहां समय दृष्टि नार के देखा, यहाँ समय दृष्टि देव लेना। एकेंद्रियों में, अभी इंद्रिय मार्गणा में, एकेंद्रियों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? देखो जैसे हमने देखा था ना, स्थिति में भी देखा था, बाप वो याद है ना, बादर पर्याप्तों के उत्कृष्ट भी होगा और जघन्य भी होगा, क्योंकि संकलेश भी और विशुद्धि भी उनमें ज्यादा होंगे। तो एकेंद्रिय में किसको लेना? चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एकेंद्रिय जीव है ना, और ऊपर पर्याप्ति से पर्याप्त लिखा ही है इसलिए उसका अर्थ क्या है? बादर एकेंद्रिय पर्याप्त हुआ है। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनी और नाम कर्म के गोत्र को छोड़ा है, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्धि लिया और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एकेंद्रिय जीव उक्त दोनों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है।
वो गोत्र नहीं लिया ना,
गोत्र को बाद में बताएंगे। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर एकेंद्रीय जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, क्योंकि वो तीर्यंचायु मनुष्यायु दोनों ही प्रशस्त है, इसमें तो मनुष्यायु को बांधेगी तत्प्रायोग्य विशुद्धि में। अब गोत्र की बात है, गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित। ये विशुद्धि की बात है, उच्च गोत्र की बात ली है ना, तो गोत्र में उत्कृष्ट अनुभाग उच्च गोत्र का होगा। तो कौन है? तो अन्यतर बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर वनस्पति का एक जीव, क्योंकि अग्नि का एक और वायु का एक उच्च गोत्र को बांधते ही नहीं है। और ऐसा नहीं, उनमें अगर निज गोत्र का उत्कृष्ट होता होगा तो उनका नाम लेते हैं। यहाँ गोत्र इन जनरल है तो उच्च गोत्र को ही लेना है। तो गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बनने का स्वामी है। इसी प्रकार पहले तो एकेंद्रीय इन जनरल लिया था, बादर एकेंद्रीय, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त जिसको कहेंगे, बादर पर्याप्त एकेंद्रीय, बादर अपर्याप्त एकेंद्रीय, सूक्ष्म एकेंद्रीय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवों के जानना चाहिए। उनकी अपनी अपनी जो रेंज होगी, उसमें जो हम भेज रहे देख रहे हैं उनमें सर्व संक्लेशा सर्व विशुद्ध ऐसी बातें लगा लेना। विशेषार्थ एकेंद्रियों में उच्च गोत्र का बंध अग्नि का एक वायु का एक जीवों के नहीं होता, इसलिए गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी इनको छोड़कर शेष तीन बादर काय वाले जीवों के कहा है। तो बादर वनस्पति का एक कहा है ना, तो उसमें बादर निगोद भी आ गए, बादर प्रत्येक जीव भी आ गए, वो कर सकते उसका उत्कृष्ट।
तो क्या बादर में अग्नि विशुद्धि नहीं होगी जितनी विशुद्धि
उनके उनके विशुद्धि हो गए तो निज गोत्र बंधेगा।
अच्छा,
तो निज गोत्र का बंध उत्कृष्ट होगा कि जगन्य होगा?
नहीं समझे।
और अगर उनके सर्व संकलेश है तो बाकी लोगों को भी उतना ही संकलेश में निज गोत्र बंध है, तो निज गोत्र का उत्कृष्ट सभी बाकी भी जीव करेंगे, सभी एकेंद्रीय कर सकते। अग्नि का एक वायु का एक अति विशुद्ध में निज गोत्र बांधेंगे, पर उनके एकेंद्रियों के लिए वो सर्व जघन्य अनुभव होगा, वो उत्तर प्रकृतियों में आ जाएगी बात। एक पैराग्राफ हो जाएगा अपना। पृथ्वी का एक अभी काय मार्गणा में, ऊपर तो हमारी एकेंद्रीय की मार्गणा थी, इंद्रिय मार्गणा थी और एकेंद्रियों के अलग अलग भेद देखे थे, और पंचेंद्रिय और त्रस की बात तो ओके समान बताई थे, इसलिए डायरेक्ट काय मार्गणा की बात नहीं निकाली। पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक, प्रत्येक शरीर और निगोद जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर जीव, क्योंकि पृथ्वी का एक इन जनरल बात कर रहे हैं तो उसमें से कौन करेगा? तो बादर, और बादर पर्याप्त ही होता है क्योंकि सब पर्याप्तियों से पर्याप्त ऊपर लिख दिया है। चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के ऊपर गोत्र को अलग से रखा था, क्योंकि वहां तो एक इंद्रियों में अन्य को छोड़कर बात बतानी थी, और यहाँ तो कायिकों की अलग अलग कायिक वाले ही है और इसमें अग्निवायु को छोड़कर ही बात ली है, इसलिए इनके लिए वेदनीय नाम गोत्र इकट्ठा लिया। उसके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो कहते साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब ये सब पर्याप्ति से पर्याप्त वगैरह सब ले लेना। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तत्प्रायोग विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर जीव। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी, यहाँ पर भी बादर को ही लिया है। स्थिति तो कोई भी सूक्ष्म हो, बादर हो, कोई भी बांधता है। पूर्व कोटि की स्थिति तो बांध सकता है, परंतु यहाँ अनुभाग में विशुद्धि वाले को अनुभाग ज्यादा बंधेगा। इसी प्रकार इनके बादर यानी बादर पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त है, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, जैसे बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, और सब सूक्ष्म जीवों में यानी सूक्ष्म पृथ्वी का एक सूक्ष्म सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त अपर्याप्त सब सभी भेदों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिस जिसका उद्देश्य हो यानी जिसका कथन कर रहे हैं वहाँ उसका नाम ग्रहण करके स्वामित्व प्राप्त करना चाहिए। यानी जहाँ हम बात करेंगे कि सूक्ष्म की बात है तो सूक्ष्म में बादर करेंगे, और सूक्ष्म बादरों में तो बादर है ही है तो वही करेंगे, तो साकार जागृत वगैरह वगैरह शब्द लगाना उसमें। घाती के लिए सर्व संकलेश वाला लेना, और अघाती में ये जो है वेदनीय नाम गोत्र उसके लिए सर्व विशुद्ध लेना, आयु में तत्प्रायोगिक विशुद्ध लेना। हाँ, ये मार्गणा हो जाते, अग्नि का एक वायु का एक पढ़ लेते। अग्नि का एक और वायु का एक जीव में चार घाती कर्मों और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी अग्नि का एक वायु का एक स्पेसिफिकली बताए ना, तो सब पर्याप्तियों से पर्याप्त, क्योंकि इनमें एक निज गोत्र ही बनता है। साकार जागृत और नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त उक्त बादर जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है। तो क्या अन्य एक इंद्रिय नहीं है उसके स्वामी?
नहीं, गोत्र के लिए अन्य हम लोग उच्च गोत्र में उत्कृष्ट
हाँ, और निज गोत्र का उत्कृष्ट अन्य जीव बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे?
बांधेंगे,
पर हमारी मार्गणा अग्नि का एक वायु का एक चल रही, ख्याल में आते हैं ना? और उच्च गोत्र बांधते ही नहीं है, इसलिए निज गोत्र का ही गोत्र के लिए कहेंगे। वेदनी और नाम गोत्र के ऊपर बांध ली थी, इसलिए वेदनी और नाम कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी कौन है? अब यहाँ सर्व विशुद्ध लेना, साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर उक्त जीव उक्त ने अग्नि का एक वायु पाई उक्त दोनों कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब इसके लिए तो एक ही तीर्यंच आयु ही रह गई, तत्प्रायोग्य विशुद्ध उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर बादर उक्त जीव उक्त ने अग्नि का एक वायु का एक आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी है। इसी प्रकार इनके बादर बादर पर्याप्त बादर अपर्याप्त और सब सूक्ष्म सब यानी अग्नि का एक के वैरायटी जीवों के भी जानना चाहिए। तो यहाँ हमारी काय मार्गणा समाप्त हो गई, कल हम योग मार्गणा से प्रारंभ करेंगे, यहाँ रुकते हैं। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो